أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور ہم سب کو بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم انشاءاللہ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم ٹاپک کرنے والے ہیں، گناہوں کے اثرات، اور خاص طور میں اس میں خواہشات کا نشہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. پیج نمبر ہے کتاب کے اعتبار سے 76. خواہشات کا نشہ انسان کو غافل کر دیتا ہے. گناہ کے وقت انسان اور اس کے فہم کے درمیان خواہش کا نشہ آڑے آ جاتا ہے. اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں جملے کو. گناہ کے وقت انسان اور اس کے فہم کے درمیان، یعنی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ امیجن کیجئے، گناہ کرتے وقت عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، سوچ سمجھ ختم ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جوانی کے گناہ. اس وقت تو ماں باپ کی بات اور عزت بے عزتی کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو جملہ لکھیے، گناہ کے وقت انسان اور اس کے فہم کے درمیان خواہش کا نشہ آڑے آ جاتا ہے. اس وقت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، ورنہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت جان کر کرے تو دین سے خارج ہو جائے گا. اس کو ہائی لائٹ کریں، اگر لکھ سکتے ہیں تو جلدی میں لکھیں. ایک ایک جملہ جیم ہے اس ٹاپک کا، یعنی جو بات کہی ہے اس کو دہرا دیتی ہوں چند جملوں میں. گناہ کے وقت انسان اور اس کے فہم کے درمیان خواہش کا نشہ آڑے آ جاتا ہے. اس وقت اپنی خواہش کو پورا کرنے کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آتا، ورنہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت جان کر کرے تو دین سے خارج ہو جائے گا. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو اللہ کی رحمت سے سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس چیز سے رک بھی جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے تو بھول کے کرتے ہیں اور پھر بھولے بن جاتے ہیں. گناہ کرنے والا صرف خواہش نفس کی تکمیل کرتا ہے. اس کے ضمن میں حکم الہی کی خلاف ورزی ہوتی ہے. احکام الہی، خلاف ورزی اور خواہشات کی پیروی اسباب خواہشات کے قریب جانے سے وقوع پذیر ہوتی ہے. اس وقت عقل کام نہیں کرتی، ورنہ عقل مند انسان فی الحال کی لذت، یعنی لفظ لکھے فی الحال، اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا، ونس اے وائل، پھر کیا ہے، کبھی کی تو بات ہے، سب کرتے ہیں، میں کر رہا ہوں، ابھی تو یہی دیکھو پھر دیکھیں گے. اور ایک جملہ بہت لوگ بولتے ہیں، دیکھا جائے گا، اچھا جو ہوگا دیکھیں گے. بچے بھی ماں باپ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے عموماً پہلے، بعد میں پھر جب وہ واقعی پھر دیکھا جاتا ہے نا، تو پھر دیکھنے کے بعد پھر وہ نئی دنیا بھی دیکھتی ہے. لیکن پھر اس وقت وقت بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ انسان گناہوں میں جب پڑتا ہے تو اس کو ایک قسم کا خواہشات کا انجیکشن لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. پھر اس کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یہ کچھ نہیں ہوتا، بس وہ ایک کریونگ ہے، ایک کریونگ ہے، اور وہ اس کام میں چلے جاتا ہے. تو پھر عقل کام نہیں کرتی، ورنہ عقل مند انسان فی الحال کی لذت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ساری زندگی کی حسرت کا موازنہ اگر کرے گا تو اس کے قریب تک نہ بھٹکے گا. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. ساری زندگی کی حسرت ہوتی ہے فی الحال کی لذت. اس کا مائنڈ میپ بنائیں تو بڑا خوبصورت بن جائے. چند منٹ کا شوق لذت اور زندگی بھر کی حسرت. اس کو آپ نفس کے گناہ دیکھ لیجئے، مالی غبن کے کوئی دیکھ لیجئے جملے، ماں باپ کے حکم سے آگے کٹ کے کہیں اور نکلنے کو دیکھیے. عموماً بندہ بعد میں شرمندہ ہوتا ہے. اگرچہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کو کیوں نہ دے دی، وہ اس کا ارتکاب، یعنی اس کو کرتا کیوں ہے، محض اس لیے کہ اس کے فکر کی راہ میں خواہش کا نشہ حائل ہوتا ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ خواہشیں ہیں جو بھگ ٹٹ اندھا دھند ہمیں گناہوں کی شہراہ پہ بھگواتی ہیں. آہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ایک لمحے میں ختم ہو گئے. ایک ایک جملے کا اثر اپنے دل پہ لیجئے. گویا کہ ان کا وجود ہی نہ رہا. ایسے ہی ہے نا، یاد ہے آپ کو کب کیا کیا، کیا دیکھا، کیا سنا، کدھر چل پڑے؟ آج تو ان کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے. مگر ان کے برے اثرات تا دم مرگ، یعنی مرتے دم تک برقرار رہے. ان کی کڑواہٹ اور شرمندگی جزو زندگی بن گئی. कभी ये सारी बातें बच्चों को बड़े होने से पहले बता दी जाए ना, तो वो बेचारे भी कितने ही ऐसे तजुर्बात करने से बाज आ जाएं जो कि इंसान अमूमन जवानी के नशे में करता है। और एक जुमला बोल देती हूँ, जवानी के नशे और ख्वाहिश के नशे के मिलने से गुनाहों की शिद्दत बढ़ जाती है। यानी गुनाहों का नशा, ख्वाहिशात का नशा तो है ही, ख्वाहिशों का नशा जब जवानी के नशे के साथ मिल जाता है ना, तो फिर तो आप कह लीजिए कि बंदा वाकई बेसुध हो जाता है, डबल डोज हो जाती है नशे की। और आप देखिए, नशा ज़रा सा ज़्यादा कर दिया जाए तो बेहोशी मौत में भी बदल सकती है। गुनाहों से बचने का अहम तरीन और अजीम तरीन ज़रिया इनके असबाब से खुद को बचाना और इनके करीब ना जाना है। ये है तरीका, आसान सा। कुरान क्या कहता है, ला तकरबुज़ ज़िना इन्नहू काना फाहिशतन। तो बच्चों को पहले ही सिखा दीजिए कि इससे पहले कोई गिरे और फिर हम एम्बुलेंस को कॉल करें, इस तरफ जाइए ही नहीं, क्योंकि मेन होल खुला हुआ है। जिस शख्स को ये राज समझ में आ जाए और असबाब असियां, असियान कहते हैं नाफरमानी को, यानी नाफरमानी, डिसोबीडियंस के असबाब, कुछ भी, यानी इसको आप कह सकते हैं असबाब असियान से बचने की खूब कोशिश करें, तो इसकी सलामती और महफूज होना यकीनी है। जितनी बात की है, ये चूंकि स्किल उर्दू है तो मैं चंद जुमलों में आपको हजम करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये आज के दौर का नहीं, हर दौर का इशू है। ये आज की जवान नस्ल के लिए नहीं, ये हमारे वक्त के जवानों के लिए भी ऐसे ही था। और अफसोस की बात है कि वक्त गुजरते गुजरते अब जवानी नहीं, उधेड़ उम्र में भी ख्वाहिशात जान नहीं छोड़ती। तो बात का खुलासा क्या निकला? नंबर एक, ख्वाहिशों का एक नशा होता है। जब ख्वाहिश का नशा सर पे चढ़ता है तो अकल मारी जाती है, समझ बूझ काम करना छोड़ देती है। इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके क्या सीक्वेंसेस होंगे, माँ बाप को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, बच्चों को कल क्या होगा, बीवी क्या करेगी, यानी हर रिश्ता जो हमारे साथ होता है ना, वो बाज़ दफ़ा हमारे उस गुनाह पे शर्मिंदगी महसूस करता है। ये सब उस वक़्त नहीं समझ आता। और अक्सर आपने देखा होगा कि कभी बच्चे किसी गलत काम का तकाजा करें तो माँ बाप चीख चीख के कहते हैं, तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो नहीं, वो तो नशे में है। देखिए, सोते बंदे के पास जाकर आप पूरा कुरान पढ़ाएं, उसको क्या लगे? पहले लोगों को बेदार करें, जगाएं, ख्वाहिश के नशे का असर ख़त्म कीजिए। मसलन जैसे एक मिसाल दे देती हूँ, अब इसको आप ख्वाहिश को बच्चे की ख्वाहिश से भी ले सकते हैं, जवान से भी और बूढ़ों से। एक बच्चा है, वो आइसक्रीम खाना चाहता है, माँ से पैसे मांगता है, माँ नहीं देती। माँ नहीं देती ना, तो वो जाकर चौकीदार से 100 रुपया ले लेता है, या माँ ने किचन में कुछ पैसे रखे हुए थे, बच्चा वहाँ से निकाल लेता है और जाके बाहर से आइसक्रीम ले आता है। इतने में दूसरा भाई बहन या कोई और घर का फर्द है, वो कहता है, इसने पैसे चोरी किए हैं और देखेंगे उसके अब आइसक्रीम ले आया। अब ये है माँ का इम्तिहान कि वो आए और आप चीखें और चिल्लाएं, और एक तो आइसक्रीम छीनने उससे, फिर वो और रोए, फिर थप्पड़ मारें, फिर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएं। नहीं, ऐसा ना करें, उसको खाने दीजिए आइसक्रीम। वो आइसक्रीम के नशे में चूर है इस वक्त, उसको नहीं पता चोरी चोरी क्या होती है, उसको पता है सब कुछ मेरा ही है। कह लीजिए कि बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपना कहते हैं। एक दफ़ा उसकी आइसक्रीम का नशा उसके दिमाग से उतर जाए, जब बाद में ज़रा सा वक्त गुजरे, फारिग हो, या सोने का उसका वक्त करीब है, या उसको माँ की अब ज़रूरत है, तो फिर उसको आराम से पास बिठा लें। अब वो छोटा बच्चा है तो छोटी बातें कीजिएगा, छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। बस माँ की भी ये बहुत बड़ी गलती होती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि फिर बच्चे भी चप चप कर कितने बड़े बड़े जुमले बोलते हैं, ज़रा भी नहीं अच्छे लगते, बच्चे मासूम ही अच्छे लगते हैं। अब उसको प्यार से समझाइए, एक बात, दूसरी बात, तीसरी, यकीन करें वो बच्चा कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं लेगा। लेकिन हिकमत की ज़रूरत है। सेम थिंग दूसरी भी चीज़ों में, हर उम्र का गुनाह। अब एक सिगरेट पीने के नशे में चूरा, आप उसको हदीसें सुना रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं। एक शख्स असर के वक्त सो रहा है, सोते को आप कह रहे हैं आप जहन्नमी, ये देखिए हदीस, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, आप हदीस सुना देते हैं कि असर की नमाज छोड़ने वाला ये है और वो तो मुनाफिक है। आपकी लंबी तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो और चिड़चिड़ा हो जाएगा। पहले वही बात है कि भूला था अब भोला बन जाएगा। तो लोगों का ख्वाहिशों का नशा उतरने दें। हाँ, अब आपने देख लिया कि ये इसका रुझान दूसरी तरफ जा रहा है, अब उसको पहले ही इससे कि उसके दिल में ख्वाहिश पहले, यानी आइसक्रीम खाने की, घर से बाहर जाने की, फिल्म देखनी है, दोस्त के घर नाइट स्पेंड करनी है, पहले ही आप उसकी उस बीमारी को डायग्नोज करके उसका माइंडसेट शुरू करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये, यानी बजाय इसके कि आप उनको फोर्स करें, उनके दिल और दिमाग को सुनाएं। देखिए, एक छोटी सी मिसाल दे दूं, क्योंकि ये बात बड़ी अहम है और हम सबको ही फायदे की है। बस आप देखिए कि ये जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसके असरात तो हम सबके ऊपर आते ही हैं ना। अब जब वो असरात हमारे ऊपर आते हैं तो हमारे इर्द गिर्द वालों पर भी उसका कुछ ना कुछ असर आता है। तो अब आप करेंगे क्या उसको? आप पहले उसके साथ दोस्ती कीजिए, कुर्बत रखिए। जब आपके साथ मोहब्बत हो जाएगी ना, तो आपकी बात की भी जगह बन जाएगी। हम अपनी जगह बनाए बगैर बात की मोहब्बत दिलाना चाहते हैं। अगर बात कहने वाले की इज्जत नहीं है ना आपके दिल में, मैं कहती हूँ वो सोने की बातें करें, वो कुरान के साथ हदीस और हदीस के साथ कुरान नोट करें, और वो कहना चाहिए ना कि कलामे दिल फरेब, आपके दिल में जिसकी कदर नहीं आप उसकी बात नहीं सुन सकते, ये लिख ले। और वो लोग कभी भी नहीं किसी से सीखते जिनके दिल में उस बात के कहने वाले की कदर नहीं होती। यही असूल माँ बाप पे भी है, यही हमारे बड़ों पे भी होता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों में से अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने लोगों को पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, उसके बाद फिर उसका इलाज करें। फ्रीजर से निकली चीज़ को आप एकदम पकड़ कर चूल्हे पर रख दें तो ऊपर से जल जाएगी, अंदर से ठंडी यख होगी। तो सारी बात का खुलासा कि ख्वाहिशात के नशे को उतरने दीजिए, और फिर अपने बच्चों को इतने प्यारे तरीके से, और अपने मातहतों को, अपने साथ आलों को, अपने शौहर को, अपनी बीवी को, क्योंकि ये ख्वाहिश का नशा ना सब पे होता है, हमारे ऊपर भी होता है। मत सोचिए कि हम दीन सीखने सिखाने वाले ख्वाहिश प्रूफ हो गए, हमारी तो कुछ ख्वाहिशें भी ज़्यादा ही अजीब होंगी, दूसरों की छोटी होंगी, हमारी ज़्यादा बड़ी होंगी। तो एक वक्त आएगा कि आपको गुनाह करने से पहले ही पता लग जाएगा कि आप कर क्या रहे थे, और उसके सीक्वेंसेस ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें सीखी है ना, अभी चंद मिनट की लज्जत और सारी जिंदगी की हसरत। चीनी की एक चम्मच जो कोई भी खाता है, उसके बारे में एक मैंने ऐड पढ़ा था बहुत अरसा पहले, कि वो आपके टेस्ट बड्स में शायद 6 सेकंड रहती है, आपके एसोफेगस खुराक की नाली में शायद 10 सेकंड रहती होगी, स्टमक में 6 घंटे रहती होगी, और आपकी वेस्ट यानी कमर के गिर्द हमेशा के लिए चर्बी की एक तय बन जाती है। बस उससे समझ ले तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। चीज़ों को ऐसे ऐसे लेके चलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए, हमारी ही कमियां होती हैं। और दूसरी बात है कि अल्लाह फिर हमें दिखाना भी तो चाहता है ना, कि जब तक अल्लाह ना चाहे दुनिया में कोई काम नहीं होता। फिर इसके बाद आप देखिए एक और चीज़, गलबे शहवत। ख्वाहिश और शहवत में क्या फ़र्क है? ख्वाहिश किसी भी चीज़ की हो सकती है। खूब सोना है मुझे, बच्चे सोना चाहते हैं इसीलिए फजर नहीं पड़ते, रात जागना चाहते हैं इसीलिए ईशा के बाद नहीं सोते, अब आप उनके साथ लगे में। शहवत क्या होती है? इसमें नफ्स का मिलान, इसमें जिंसियात और अपोजिट जेंडर और ये सब कुछ आती है। गुनाहगारों से गुनाह सरजद होने के सबब पर मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी के इरादे से इर्तकाबे गुनाह नहीं करते, बल्कि ख्वाहिश नफ्स को पूरा करते हैं, जिसके ज़िमन में हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी होती है। हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी का इल्म होते हुए इसका इर्तकाब क्यों होता है? अक्सर लोग कहते हैं ना, जब हमें पता जो है कि अल्लाह नाराज़ होता है इससे, तो लोग क्यों करते हैं? बस आज किसको नहीं पता कि नमाज पढ़नी चाहिए, फिर क्यों नहीं पढ़ते? किसको नहीं पता शराब बुरी चीज़ है, लोग क्यों पीते हैं? तो ये इंसान अक्सर सोचता है, तो ये कहते हैं कि मैंने इस पर गौर व फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि इसका सबब अल्लाह ताला के फजलो करम पर भरोसा है। इसको हाईलाइट करें, अगर ये लोग अल्लाह ताला के कर्मों मेहरबानी को नज़र में रखने के साथ साथ इसकी हैबत व अजमत पर भी नज़र रखते तो ख्वाहिशात नफ्स की तरफ हाथ बढ़ाने की हरगिज़ जुरत न करते। इनको ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को मौत देता है, हैवान को ज़िबा होने के लिए लोगों के सामने डाल देता है, और बच्चों को मर्ज में मुब्तला करके तकलीफ़ देता है, आलिम को फ़कीर और जाहिल को गनी करता है। खुलासा के गुनाहों की तरफ़ कदम बढ़ाने वाले को इन सिफ़ात इलाहिया की तरफ़ नज़र करके खुद को बचाना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और तुमको डराता है अल्लाह अपने नफ्स से। इतनी बात को ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात देखिए, ग़ल्बे शहवत में क्या है कि गुनाह क्यों सरज़द होते हैं। इसके असबाब में पहली बात है कि नाफरमानी के इरादे से नहीं गुनाह करते लोग। लेकिन आप कह सकते हैं मैं अल्लाह का नाफरमान बनना चाहता हूँ। कोई बच्चा कहता है अल्लाह करे मैं अपनी माँ का नाफरमान ही बन जाऊँ, आई वॉन्ट टू डिसोबे माई मदर, नहीं करते ना, तो फिर क्यों करते हैं? ख्वाहिश नफ्स। अगर हम माँ बाप ये बात समझ जाए ना, तो हम अपने बच्चों को बिल्कुल डिफरेंट तरह से डील करें। अक्सर भी ना हम क्या कहते हैं उनको ब्लेमिंग स्टाइल में, हाँ तुमने तो सोचा हुआ है, माँ को दुख दे के तुझे खुशी होती है, बाप को जब तक ये ना हो जाए वो ना हो जाए तुझे चैन नहीं पड़ता, ऐसे जुमले ना बोला करें। बच्चे इसलिए नहीं करते गुनाह कि आपको दुख हो, वो बेचारे चाहते हैं कि आपको दुख ना हो, पर मसला क्या है? ख्वाहिश नफ्स। ये चीज़ तो बच्चों की ख्वाहिशों पे पांव रखना सिखाएं, और ये जिम्मेदार आप हैं, आपने ख्वाहिशें दिलवाई हैं इनको। चंद दिन पहले एक माँ मुझे मिली और बेटियाँ भी उनकी जो भी साथ थे ना, तो कह रही कि मैंने अपनी बच्चियों को कभी ये सिखाया ही नहीं कि ये फैशन होता है, ये गर्मियों के कपड़े, ये सर्दियों के, ये नहीं, मैं सब जैसे खुद थी मैंने इनको ऐसे ही पाला। कहती कि ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरी माँ ने हमें ऐसे पाला था, तो मैंने भी अपनी बच्चियों से कभी नहीं पूछ पूछ के चीज़ें बनाई। अब उसका नतीजा क्या निकला कि अब बच्चियाँ जवान हो गई हैं तो अब वो कोई ख्वाहिश नहीं करती। अब वो माँ कहती है कि मुझे बल्कि लोग कहते हैं तुम्हारी बेटियाँ पहनती नहीं, ओढ़ती नहीं, मैं उनको कुछ कहूँ तो कहती है अम्मी मेरा दिल ही नहीं करता, तो मैं कहती शुक्र अपने घर जाके करना, ना वो मेकअप करती हैं ना वो फैशन करती हैं, और वो बस जो माँ करती हैं वही कर रही हैं। और वो खुद कह रही थी कि मैं ये इसलिए करती हूँ कि हमारी माँ ने मरसा ये किया था। अब उनकी माँ को PhD थी, को पेरेंटिंग सेमिनार्स अटेंड करके आती थी यूनिवर्सिटीज़ में, वो समझदार माएँ थी। ये आज की माओ ने और माहौल ने और माशरे ने हमें सिखा दिया। एक बेटी वो है कि शादी भी हो रही है ना तो कहती है अम्मी मेरे कपड़े चूज़ करेंगी, उसकी शादी के जोड़े कपड़े सब कुछ माँ चूज़ करेगी, और दूसरी माँ कहती है मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेती भाई, उनको पसंद नहीं आता। फ़र्क इसका है, तो जिस तरह की आदत डाल दी जाती है वैसे ही लोग फिर होने लगते हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि हम क्यों करते हैं गुनाह, ये भी इसमें हाईलाइट कीजिए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, करम और मेहरबानी। हाँ जी कोई बात नहीं, उसका फजल है, तो करम और मेहरबानी तो है, तो हैबत और अजमत भी दिल में रखिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं जो भी गुनाह कर लूँगी अल्लाह मुझे माफ़ी कर देगा, लेकिन अगर उसने ना किया तो, बात समझ गए, तो ये भी नुक्ता नोट करें। फिर अगली चीज़ देखिए कि अल्लाह की ज़ात से हमेशा डरिए। ये दो दफ़ा आयत आती है एक दो आयतों के फ़र्क से कि वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है, अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे। ये कहते हैं कि मैंने सूरत यूसुफ़ पढ़ी, इसमें हज़रत यूसुफ़ के सब्र पर इनकी तारीफ़ शरह बस्त के साथ बयान की गई। इनके सब्र पर इनकी तारीफ़ शरह बस्त कहते हैं फैला के, एलेबोरेटेड, खूब खोल खोल के, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार कहते हैं ना इन्ना हुकाना मिनल मुहसिनीन, जेल वाले भी लोग कह रहे थे हज़रत यूसुफ़ के बारे में, तो यूसुफ़ की बहुत तारीफ़ें हैं सूरह यूसुफ़ में। और ये कहते हैं कि जो मुझे इसमें चीज़ मिली वो क्या थी, और ख्वाहिश को छोड़ने पर रफ़ मंजिलत को देख कर मुतअज्जिब हुआ, यानी हैरान हो गया, और इसके असल राज को जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि इसका असल सबब ख्वाहिश नफ्स की मुखालफत है। मुश्किल जुमला आसान करती हूँ। सूरज यूसुफ में हज़रत यूसुफ का बहुत तज़किरा, ख़वातीन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, पहले तो एक खातून थी, फिर दूसरी ख़वातीन उसकी दोस्तें भी देखा देखी उसी तरफ आ गईं। यूसुफ ने कहा अल्लाह ताला मुझे इन औरतों से बचा के जेल में डाल दे, वो बेहतर है। ये था यूसुफ का अपने नफ्स पे कंट्रोल, ख्वाहिश पे सब्र। अल्लाह ने जेल से निकाला तो किधर भेजा, मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। ये रफ़ा मंजिलत है, और ये हमारे बड़े कहा करते थे, बड़ा आम जुमला होता था कि जो सिर्फ ख्वाहिशों के हरीस होते हैं ना वो बड़े होके फिर निकम्मे होते हैं। जैसे जो बच्चे आप स्कूल ना जाएं, पढ़े ना, काम ना करें, तो वो क्या बनेंगे फिर बड़े होके, या तो वो कोई चोर डाकू ही बनेंगे ना। तो यानी हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ने कुएं से निकालकर एक ऐसे घर में भेज दिया जहां हुस्न बिखरा हुआ था, और वहां से उठाकर अल्लाह ताला ने एक बादशाहत के मुकाम के करीब कर दिया। वजह क्या थी कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स पे पांव रखा था। जब हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाहिश की मुखालफत करके अजीम कारनामा अंजाम दिया तो सब्र के लिए ज़रबुल मिसल बन गए। ये भी बड़ा प्यारा जुमला है। और ये अजीम शर्फ महज एक लम्हे के सब्र का नतीजा। सब्र के अंजाम और ख्वाहिशात के नतायज को सोचिए और गौर कीजिए। अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। अक्लमंद इंसान शीरी यानी मीठे और कड़वे में फ़र्क करता है। नफ्स को ख्वाहिशात नफ्स से रोकना तमाम कामयाबियों की जड़ और इसकी मवाफ़कत, मवाफ़कत अपोजिट है उसी का, यानी जो नफ्स कहते हैं वो करते ही जाना, ये तमाम नाकामियों का सबब है। तो इस सारे में क्या सीखा? हज़रत यूसुफ़ का किरदार। आप देखिए, हम जब भी अंबिया कराम के किस्से पढ़ते हैं तो हमें रश्क तो बड़ा आता है, लेकिन कभी हम में से कोई ऐसी आजमाइश से ज़रा दूर से भी गुजार दिया जाए ना तो हमारी तो चीखें निकल जाती हैं। बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जो हमारा अंदर खोलते हैं। आप यकीन कीजिए कि कुछ चीज़ें फितनों में और आजमाइशों में ही बाहर आती हैं। अल्लाह के साथ अच्छा ताल्लुक, अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन मामला करते हुए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा करें। बस अब जैसे आज के हालात हैं, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई फितना नहीं देखा जो आजकल है। हमेशा कभी एक मुल्क का कोई मसला खबरों में आता था, कभी किसी दूसरे का, कभी कहीं जलजला आया, जापान में जलजला आ गया, कभी एबटाबाद में आ गया, कभी फ्लडिंग हो गई, कभी जंगें लग गई, कोई बीमारी फैल गई। इस वक्त वही बात है कि ला मलजवला मन जमीन का इल्ला इलैक। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया इस वक्त ख्वाहिशों और गुनाहों की लपेट में आई थी ना, अल्लाह ने ऐसे सबको पकड़ दिया। और आप नोट कीजिए कि ऐसी वबाएं अमूमन उन जगहों से उठी और उठती हैं अमूमन, फितने भी और आजमाइशें और साजिशें भी, कि फिर वो होते होते मुसलमानों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। एक बड़ी दूर की बात है, अगर आप समझ जाए ना तो इसमें भी बहुत कुछ है। हम मुसलमान गैरों को देख देख कर उनके नक्शे पा पे चले, हम भी ख्वाहिशों के हरीस हो गए, जायकों के हरीस हो गए। अल्लाह ने वही इंजाम हमें भी दिखा दिया। मोमिन और गैर मोमिन में फ़र्क ख्वाहिश के कंट्रोल्ड होने का होता है। शहवत सब में होती है, पर मुसलमान की शहवत अल्लाह के खौफ का सोचते ही भाग जाती है। वो कैसे गुनाह करे, उसको तो उसके बाद कोड़े दिख रहे हैं। वो कैसे अपने आप को एक्सपोज करे, उसको तो उसके बाद अल्लाह की पकड़ दिखती है। वो कैसे शराब पिए, वो कैसे सूद और जुआ ले, उसको तो उसके बाद मार पड़नी है। उसकी सारी ख्वाहिशें, वो कहते हैं ना, हवा हो गई, तोते उड़ जाते हैं हाथों के। गैर मोमिन गैर मुस्लिम कहते होगा, देखी जाएगी। इसीलिए तो उन्होंने अपनी शरीयत से वो चीज़ें ही निकाल के फेंक दी कि गिल्टी ना रहे हम पर। देखिए, ये सारा कुछ पिछली किताबों में भी हराम था जो आज इस्लाम में हराम है, और ये सब कुछ जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो पिछली किताबों में भी थी, तो फिर आज किधर गया उनका? ये भी उनकी ख्वाहिशात की एक मिसाल है कि उन्होंने किताबों में से वो सब निकाल ही दिया। और जिन कवानीन और जाब्तों पे अमल खुद ही नहीं करेंगे ना हम, वो फिर एक वक्त आएगा फाइलें गुम जाएंगी। तो अल्लाह से ये दुआ करनी है हमने कि अल्लाह हमें ख्वाहिशों के पीछे न लगा। फिर इसके बाद देखिए तफरीत। तफरीत इसी का एक और रंग है, अफरात और तफरीत, एग्जेजुरेशन कह लीजिए, या चीज़ में कमी करना, अफरात ज़्यादती, और तफरीत हाथ साउंड से भी देखे तो नीचे जा रहा है, यानी किसी चीज़ की बाउंड्रीज को क्रॉस करें उसका क्या अंजाम होता है। 572 हिजरी, 572 हिजरी में सख्त महंगाई का सैलाब आया, खुराक सख्त महंगी हो गई, अशिया खुर्दनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, हत्ता कि एक वक्त की खुराक मिलना मुश्किल हो गई। और वो लोग नहायत काबले रश गिरदाने गए जो अपनी खुराक खुद काश्त करते हैं, और जिन लोगों ने कीमतें बढ़ने से पहले ज़खीरा अंदोजी कर ली थी वो इंतहाई खुश हुए और फूले न समाए। फ़र्क तो आप समझ ही गए। और दूसरे लोग और फ़ुकरा अपना सब कुछ कुर्बान करने लगे। मुअज़्ज़ज़ नफूस यानी जो वाकई काबले इज़्ज़त लोग थे, मुअज़्ज़ज़ नफ्स जो थे या अच्छे लोग जो थे, सवाल करने पर मजबूर हो गए, यानी उनके पास था ही कुछ नहीं क्योंकि दूसरों ने जो अपने घर भर लिए। तो मैंने अपने नफ्स को मुखातिब करके कहा, ए इंसान। और ये नोट कीजिए, आप भी किया करें। हमारे असलाफ की आदत थी कि वो अक्सर मुहासबे के लिए अपने आप को مخاطب کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے لے کر چلتے تھے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ۔ اپنے آپ کو کسی بھی عدالت میں پیش کر دیجئے، اور مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ کیا کہا؟ کس حالت سے ذرا عبرت اور اشارہ حاصل کر کہ قیامت کے دن سخت ضرورت کے وقت وہ لوگ انتہائی قابل رشک ہوں گے جو دنیا میں نیک اعمال کر کے اس ضرورت کے لیے زاد اور توشہ وافر مقدار میں ساتھ لے گئے ہوں، یعنی جنہوں نے اپنے لیے نیکیوں کے ذخیرے جمع کیے تھے، اور انتہائی خوش و حرم ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس آخرت کے سوال کا جواب موجود ہو، اور سخت ندامت و پشیمانی اور ہلاکت ہوگی اس شخص کے لیے جس نے دنیا میں کوتاہی کی، اعمال صالح سے پہلو تہی کی اور انجام کو نہیں سوچا۔ اے شخص، جب تک روح بدن میں موجود ہے آخرت کے لیے کاشتکاری کرتے رہو۔ یہ زمانہ کاشتکاری کا ہے، فصل کاٹنے کا زمانہ تو بادل موت ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، آج اگر بیج نہیں ڈالیں گے تو کل فصل کیسے کٹے گی؟ آج بھی دیکھیے دنیا میں نفسی نفسی ہے نا، قیامت کے دن بھی یہ ہوگا۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا چاہتے، تو اس دن بھی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، سورہ بس پڑھیے، اس دن آدمی بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے، سب بھاگ رہے ہوں گے۔ سورت معارج کھول لیجیے، اس میں تو قبیلے برادریاں تک آفر پہ لگا دے گا کہ ان سب کو لے کے آگ میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ ثم ینجی، نہیں، کل انھا لزا نزات للشوا۔ تو دنیا کی نفسی نفسی آج اگر سمجھ آ گئی، اور آج دیکھیے کتنے مینز ہیں بیوی نا، اللہ نہ کرے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کئی تو ہمارے پاس پیش بندیاں موجود ہیں نا، وہاں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ سے بچنے کا، پلسرات کی سختیوں سے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا ہوگا کہ نہیں؟ اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان وہ حرکتیں بھی کرتا ہے جو ابس لگتی ہیں۔ مجھے کسی نے چند پکچرز بھیجی اور لکھا کہ ہاؤ کم، یعنی کیسے چائنا نے کرونا کو ڈیفیٹ کیا، چائنا نے جس میں اتنا زیادہ یہ مرض پھیل گیا، ایک دم کلیئرٹی کہاں آ گئی؟ انہوں نے ہر مین یوز کر لیا، پلاسٹک کے کپڑے پہن لیے، انہوں نے اپنے گھر کی خالی بوتلوں کے اندر سوراخ کر کے ان کو اپنے لیے ماسک طور پہ استعمال کر لیا، یعنی ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، ان کو نہیں لگ رہا ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ وہ جیسے چاند پہ جانے سے پہلے نہیں جو کپڑے پہننے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ایسے حلیوں میں ہیں کہ وہ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی پلاسٹک کا لفافہ پھیر رہا ہے، تو دے ڈونٹ کیئر، کیونکہ ان کو اپنی جان چاہیے تھی۔ تو دنیا میں ہم دنیا کے جراثیم بیماریوں سے فائٹ کرنے کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے قرآن سنت کدھر ہے؟ مجھے تو اپنی فکر ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ دکھا رہا ہے کہ تم بیٹھے شرماتے رہو، جاؤ، وہ اس کانفیڈنس سے دیکھنا وہ سارے کام کر لیں گے۔ ہم آخرت کے جراثیموں اور آخرت کی بیماریوں اور آخرت کی پریشانیوں کو دیکھیں نا، تو ہم اس بات کی پرواہ بھی نہ کریں کہ ہم لوگوں کو کیسے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے، گناہ کا سبب غفلت ہے، نیک اعمال کرنے والوں اور بد اعمال کے مرتکب لوگوں کے احوال میں میں نے غور کیا۔ دیکھیں ہر جملے پہ نا غور کیا کرے، جب ہم بک سے پڑھتے ہیں نا تو بعض دفعہ ٹیون ان ہونے لگتے ہیں، بس نظریں دیکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، دماغ کہیں اور ہے، نہیں میں نے کیا بولا ہے آپ پوچھئے خود سے، کیا سنا آپ نے؟ نیک اعمال کرنے والے ورسز بد اعمال کرنے والے، ان کے حال فرق کیوں ہوتے ہیں؟ ایک کو نیکی بڑی ایزی لگتی ہے، ایک کو گناہ بڑا ایزی لگتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نیکی کا سبب غور و فکر، یہ نوٹ کریں، میں لفظوں کو آسان کرنا چاہوں گی بک میں سے ہی، نیکی کا سبب غور و فکر ہے اور نافرمانی کا سبب غفلت اور تدبر نہ کرنا ہے۔ از اٹ ٹرو؟ یہی ٹرو ہے، جتنا بندہ غور و فکر کرے گا نا، اینڈ پہ کہے گا چل پھر یہ نیکی کر ہی لوں، کیا فائدہ بعد میں پولیس کے پاس جانا ہے، چلو میں یہ گناہ چھوڑ ہی دوں۔ اور نافرمانیاں کون کرتا ہے؟ غافل، دیکھیں گے جو ہوگا، سوچ ختم ہو جاتی ہے بندے کی گناہ کرتے وقت، اس لیے کہ عقل مند انسان سوچتا اور سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ضرور موجود ہے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری ضروری اور لازمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے معجزات پر غور کرتا ہے، اور شریعت کی بالادستی کو قبول اور تسلیم کرتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کون سا عمل قرب الہی کا باعث ہے اور کون سا بوت، بوت کہتے ہیں دوری، اور ناراضگی کا سبب ہے، اور علم کا اعادہ، اعادہ کہتے ہیں دہرانا، ریویژن اگر مشکل ہو تو اس کے نتائج پر غور کرتا ہے، جس سے سمجھنا اور علم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات کو اٹھنا مشکل معلوم ہو، سوچئے مشکل لگتا ہے رات کو اٹھنا، ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوا مقیلا، سورہ مزمل میں دو باتیں اللہ نے کہی ہیں رات کو اٹھنے کے لیے، اشد وطن، وتی کہتے ہیں لتاڑنا، نفس کو لتاڑنے والی چیز ہے رات کو اٹھ جانا، کیونکہ جو اللہ کے لیے نیند چھوڑ دے، بستر چھوڑ دے، پانی کو ٹچ کر لے، سیدھا لیٹا تھا اب اس کی جگہ کھڑا بیٹھا، کروٹوں میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو نفس کے سارے بلکس دور ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ بات صبح پھر سیدھی نکلتی ہے، اگر رات کو نفس کہتا ہے کہ نہیں سو جاؤ ابھی بڑا مشکل ہے، تو اس کے ثواب اور اس پر ملنے والے عظیم فائدے کو سوچتا ہے، تو نیند کو قربان کرنا اور نرم گرم بستر کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور جب کسی خواہش نفس کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو اس کے بد انجام اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سخت سزا کو نظروں کے سامنے لاتا ہے، اور سمجھ جاتا ہے کہ لذت فوراً ختم ہو جائے گی، اس کے برے اثرات باقی رہیں گے، تو اس کو ترک کرنا آسان اور سہل معلوم ہوتا ہے۔ کسی سے انتقام پر نفس آمادہ ہو تو صبر کے فضائل و ثواب اور غضب کے برے اثرات پر غور کرنے سے نفس کو لگام دینا کوئی مشکل نہیں رہتا، اور لمحہ بہ لمحہ تیزی کے ساتھ گزرنے والی عمر کو دیکھتا ہے تو وقت کو قیمتی بنانے اور فرصت کو غنیمت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اس مقصد میں آسان طریقے سے کامیاب ہوتا ہے جبکہ غافل شخص کسی چیز کی طرف بھی نظر نہیں کرتا، بعض تو یہاں تک غفلت کے پردوں میں ہوتے ہیں کہ دنیا اور اس کے بنانے والے کا تصور تک نہیں کرتے۔ ہے یہ چیز آج ہمارے ارد گرد، جتنی زیادہ دنیا اتنی خدا فراموشی، کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، وی آر ایتھیسٹ، تو یہ غفلت کے پردوں میں ہے نا کہ اللہ کا انکار ہی ہو جانے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انکار تک معاملہ پہنچتا ہے، پیغمبر اور ان کے لائے ہوئے قانون کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور صرف موجودہ فوائد اور منافع پر ہی ان کی نظر ہوتی ہے، ان کی ابتدا و انتہا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کھانے کے متعلق سوائے کھانے کے اور کوئی معلومات نہیں رکھتے۔ اگر اس کی پیدائش پر غور کرتے اور سوچتے کہ یہ کس طرح وجود میں آئے، کس طرح تیار ہوئے، بدن کے لیے اس کی افادیت کس طرح اور کیوں ہے، تو اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے۔ اسی طرح جو خواہش بھی سامنے آتی ہے اس کے انجام کی طرف نظر نہیں دوڑاتے بلکہ فوراً اس کو کر بیٹھتے ہیں، اور لذت کو حاصل کرتے ہیں تو لذت کو حاصل کرنے میں جلد بازی، بہت بڑے بڑے فضائل سے محروم اور بے شمار بری عادات کے قریب کر دیتی ہے، اور اس جلد بازی کا سبب اصلی انجام سے غفلت اور انتہا پر تدبر اور غور و فکر کی کمی ہے، اور غور و فکر یہ کرنے کا فعل ہے، اور بری لذات پر عمل کرنا خواہش کا کام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیداری عطا فرمائے کہ جس سے اعمال کا انجام، فضائل و مصائب ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں۔ وَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، تو کیا ہم نے اس میں ابھی تک سیکھا ہے؟ اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔